मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 17 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, विषय तो बहुत ही सामान्य सा है, कॉमन है कह लीजिए, लेकिन मैं उसे थोड़े नए अंदाज में आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और पहले से ही मैं बता दूं कि हो सकता है कि आप सब या आप में से कुछ लोग मेरी बात से बिल्कुल सहमत न हो या आधे सहमत हो, आधे अधूरे रूप में सहमत हो, जिसे हम कहते हैं पार्शली सहमत हो, या आप आनुपातिक रूप से सहमत हो कि 25% ठीक लग रहा है, 75% गलत लग रहा है। यह च्वाइस बिल्कुल आप सबके ऊपर है और मैं खासकर इस च्वाइस को आप सबका, अपने प्रिय श्रोताओं का एक बड़ा अधिकार मानता हूं। दोस्तों, आज मैं इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि हम सबके जीवन में जो उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है, देखिए मैंने यहां सिंगुलर यूज किया है, उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है, उद्देश्य होते हैं या लक्ष्य होते हैं, इस शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए क्योंकि जब मैं उद्देश्य की बात कर रहा हूं या लक्ष्य की बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, दैट्स ऑल। ये बात अलग है कि हम अपनी जिंदगी में एक ही दिन में न जाने कितने कितने तरीके के काम करते रहते हैं, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में नसें तो बहुत हैं, वेन्स बहुत हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो एक ही है। तो हमारे जीवन का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है और उसे हम एक ही मानकर चलें तभी उसमें ताकत आएगी। अगर एक साथ हम बहुत से उद्देश्य, बहुत से लक्ष्य पाल लेंगे तो उसमें फिर बिखराव आ जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारा लक्ष्य है या जो हमारा उद्देश्य है, अगर वह एक है तो उद्देश्य या लक्ष्य है, और अगर वो बहुत सारे हैं तो उसे आप फिर कुछ दूसरा नाम दीजिए, लक्ष्य या उद्देश्य मत कहिए। दूसरी बात एक मैं और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी मैं दोनों शब्द के प्रयोग कर रहा हूं, उद्देश्य भी और लक्ष्य भी, लेकिन अब आगे चलकर मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा और वह है लक्ष्य, नॉट उद्देश्य। उसका कारण है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि जो लक्ष्य है वो ज्यादा गहरा है उद्देश्य की तुलना में। उद्देश्य जब हम कहते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं सुपरफिशियल जैसा लगता है कि ये ठीक है, ये मेरा पर्पज है, इस रूप में होता है, लेकिन जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य तो इतनी गहराई में चला जाता है कि यूं कह लीजिए कि जो ये बात कह रहा है कि यह मेरा लक्ष्य है, इसका मतलब है कि वह उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है, 100% डेडिकेटेड है, समर्पित है। साथ ही साथ केवल समर्पण ही नहीं है बल्कि उसमें लगा हुआ है और उसके दिमाग में कोई विचलन नहीं है, कहीं कोई विचलन नहीं है। जैसे फ्रेंड्स, मैं अपने बात के समर्थन में आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम सब महाभारत में जो अर्जुन के द्वारा चिड़िया के आंख की पुतली को भेदने संबंधी जो कहानी है, आप देखिए कि चिड़िया के आंख की पुतली को भेदना अर्जुन का उद्देश्य नहीं था, वो अर्जुन का लक्ष्य था। तो जहां लक्ष्य होता है वहां एक बात और होती है और वह होता है फोकस। आपको फिर और दूसरा कुछ नहीं दिख रहा होता है, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा होता है। और मुझे यह भी लगता है कि बोलने में, लक्ष्य में थोड़ी सी ताकत है, थोड़ा सा रुतबा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक ऊर्जा जैसी महसूस होती है। लक्ष्य उद्देश्य में थोड़ा सा, थोड़ी सी कमजोरी आती है। तो मित्रों, मैं लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, राइट। अब जो मेरा आज का विषय है, माफी चाहूंगा कि मैं विषय की चर्चा बाद में कर रहा हूं, और वो ये है दोस्तों कि हम सबके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। देखिए, अभी तक हम उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, कमिटमेंट की बात तो करते हैं कि हमने अपना उद्देश्य चुना, उसके प्रति हमें कमिटेड होना चाहिए, ये बात हम करते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए शुरू में ही आपसे कह दिया कि मैं चूंकि संवेदनशीलता की बात करने जा रहा हूं, तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तफाक न रखते हों, लेकिन उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ी सी मेरी बात पर विचार सोचे, थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा वक्त दें, और वक्त देने के बाद भी यदि आपको ठीक नहीं लगता है तो आप फिर रिजेक्ट कर दें, लेकिन सुनते साथ ही प्लीज रिजेक्ट न करें, है ना। वैसे भी देखिए हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो अपने विरोधी विचारों को सुनने के बाद ही होता है। हमारे अपने विचार तो है ही है, वो तो हमारी अपनी पूंजी है। जब हम विरोधी के विचार सुनते हैं, अगर आउटराइट रिजेक्ट ना करके उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, तो उस सोचने की ही प्रोसेस में तो हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये एक अच्छा विषय भी है कि आप सब इसको आधार बना करके अपने सोचने की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि जो मैं संवेदनशीलता की बात कहने जा रहा हूं, मेरा पर्पज क्या है। पर्पज मेरा ये है मित्रों कि हम सब मोटिवेशन की बात करते हैं, है ना, कि हमें कोई प्रेरणा होनी चाहिए, उत्साह बना रहना चाहिए, जोश होना चाहिए, इस तरह की बातें हम करते हैं। और नो डाउट उसके लिए हम सब कोशिश भी करते हैं, हम प्रोग्राम्स देखते हैं, कोई अच्छी उत्साहजनक फिल्म देख करके आते हैं तो उससे भी थोड़ी देर के लिए जोश चढ़ जाता है। कोई किसी का भाषण सुन लिया तो उससे जोश आ जाता है, किसी की सफलता के बारे में सुन लिया तो थोड़ी देर के लिए हमारे रगों का खून भी तेजी से दौड़ने लगता है। ये सब बातें होती हैं, लेकिन ये टिक क्यों नहीं पाती। ये टिक इसलिए नहीं पाती क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है, वो उद्देश्य है। यानी कि उद्देश्य जो है वो पूरी तरह से हमारे दिमाग के स्तर पर मौजूद रहता है। हमने जो भी अपने लिए एक रास्ता चुना है, वह उस रास्ते का चुनाव हमने सोच विचार कर तो किया है, लेकिन वो दिमाग तक ही है, दिमाग से उतर कर नीचे हृदय तक नहीं गया है। और आप देखें कि मस्तिष्क हमारे शरीर के ऊपरी भाग में है और हृदय फिर उससे नीचे भाग में है, यानी कि उसको उतर कर नीचे गहराई तक पहुंचना होता है। और जब वो गहराई में पहुंचता है तो उसके प्रति संवेदनशीलता आती है। संवेदनशीलता के लिए मैं यहां सेंसिटिविटी का यूज शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा मित्रों, संवेदनशीलता को मैं कहना चाहूंगा इमोशंस से। हालांकि आप अगर मुझे लंबे समय से सुन रहे हो तो यहां पर एक विरोधाभास मुझे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि आदमी को तर्क प्रधान होना चाहिए, है ना, तर्क को महत्व देना चाहिए, इमोशंस हमें कमजोर बनाते हैं। लेकिन मित्रों आपको ध्यान होगा मैं उस समय हमेशा ये सतर्क इस बारे में करता हूं कि नहीं, इमोशन के भी अपने यथार्थ होते हैं, इमोशंस के भी अपने तर्क होते हैं, वो व्यर्थ नहीं है, वो हमारे जीवन की सच्चाई है। इमोशंस को हमें अपनी ताकत में कन्वर्ट करना है, कमजोरी में नहीं करना है। और आपको शायद ये भी याद होगा कि बहुत पहले मैंने 4 चैनल्स ऑफ एनर्जी की बात कही थी कि हमारे जो ऊर्जा है उसके 4 स्रोत हमारे अंदर होते हैं, जिसमें मैंने एक फिजिकल एनर्जी की बात की थी, फिर मेंटल एनर्जी की बात की थी, फिर इमोशनल एनर्जी की बात की थी, और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की थी। तो वहां भी मैंने इमोशनल एनर्जी की बात की। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यदि हम अपने लक्ष्य को इमोशन से जोड़ देते हैं तो फिर हमें लगातार एक इंटरनल मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एक मैं माफी चाहते हुए एक उदाहरण देना चाहूंगा फ्रेंड्स की, जैसे मान लीजिए कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए दोनों बहुत बिजी हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, और हमारी नौकरी भी कुछ ऐसी है कि सुबह से लेकर के और अगली सुबह तक की नौकरी है। तो अब हम अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर सकेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक आया रख लेंगे, है ना, जो बच्चे को की देखभाल करे। क्रेच में डाल दिया, बच्चे को वो देखभाल कर रही है। देखिए वो अपने ढंग से सब कुछ कर रही है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आया ठीक ठाक काम नहीं करती है या बच्चे की देखरेख नहीं करती है, लोग छोड़कर जाते ही है। लेकिन अगर हम तुलना करें तो आया की जो बच्चे के प्रति जो ममता है, मैं ममता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वह मां की ममता की बराबरी नहीं कर सकती। मतलब मुझे ऐसा लगता है, सच पूछे तो मां की ममता की बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता। तो अब ये जो आया जो उस बच्चे की देखभाल कर रही है, तो देखिए वो उसका उद्देश्य है और एक पवित्र उद्देश्य है, और अपने वो काम के प्रति पूरा कमिटेड है, मतलब वो कहीं कोई कसर नहीं रख रही है। लेकिन अंदर से जो उमड़ने वाली ममता है, जो ममत्व है, वो ममत्व वो कहां से लाएगी। कुछ सीमा तक वो लेकर भी आ रही, क्योंकि वह भी एक महिला है और महिला होने के नाते प्रकृति ने उसमें ममता का वह तत्व प्राकृतिक रूप में डाल रखा है। लेकिन वह उसका अपना बच्चा तो नहीं है, अगर इसे हम बायोलॉजिकल तरीके से कहें तो उसके अपने शरीर का तो एक्सटेंशन नहीं है। बच्चा तो मां की जो बॉडी है, जो शरीर है, उसी का एक अंग ही है ना, वो उसी का तो विस्तार है। तो इस मां के अंदर अपने बच्चे के प्रति ममत्व का जो ज्वार उमड़ेगा, वो आया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो ज्वार नहीं उमड़ सकता। अपवाद के रूप में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि मां के अंदर वो ममता न उमड़ रही हो और आया के अंदर कई गुना ज्यादा ममता उमड़ रही। मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं, तो अपवाद तो हर जगह होते ही है। तो मुझे ये लगता है अगर लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता है तो इस लक्ष्य के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कुछ ऐसे ही हो जाता है जैसे कि मां और बेटी का रिश्ता या मां और बेटे का रिश्ता। और मैं जो बेटी और बेटा कह रहा हूं ये कम उम्र की बेटी और बेटे की बात कर रहा हूं, जबकि बच्चा पूरी तरह से माता पर डिपेंडेंट है, वह रिश्ता बन जाता है, वो बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। आप देखिए कि बच्चा रो रहा है, कर रहा है, लेकिन जैसे ही माता की गोद में जाता है चुप होकर के सो जाता है, कितना सुकून मिलता है। तो ये सुकून कहां से आया, मां की गोद में ऐसा क्या है? अगर कोमलता की बात करें तो मां की गोद में भी वही कोमलता है, बड़ी बहन की गोद में भी वही कोमलता, चाची ताई की गोद में भी वही कोमलता हो सकती है, लेकिन मां के रोम रोम से बच्चा जो ले रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो बहुत बड़ी, बहुत बड़ा उसके लिए सुकून है, वह उसकी संवेदनशीलता है। तो दोस्तों, यहां आज मैं अपनी बात पूरी नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर पूरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस पर विस्तार से आपसे बातें करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा, थोड़े से नए तरीके की बात मैं इसमें चूंकि ऐड कर रहा हूं, तो मुझे अपनी बात को थोड़ा सा खुलासे के साथ रखना होगा, अदरवाइज तो फिर मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि आसानी से रिजेक्ट किया जाऊं, कम से कम उस पर आप सब विचार तो करें। तो दोस्तों, आज जिस विषय की मैंने शुरुआत की है उसकी बात कुल इतनी है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं, वो तो होगा ही, संवेदनशील होना चाहिए। अगर संवेदनशीलता है तो प्रतिबद्धता ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, वो तो उसका बायो प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है, वो अलग से रह ही नहीं सकता। तो आप सब भी फ्रेंड्स इस पर विचार करें, विचार करने के लिए आप यूं कह लीजिए कि मैंने फूड फॉर थॉट आप लोगों को दे दिया है। मेरे अपने जो शेष विचार रह गए हैं उन पर फिर मैं कल आपसे फिर मुखातिब होकर के बातचीत करूंगा। अब फ्रेंड्स वक्त हो चुका है, आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।